ఓం శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్. సబ్సే పహలే ఆప్ సభీ సే హమ్ క్షమా ప్రార్థీ హై. ఆజ్ డ్రామా నే బహుత్ సుందర్ ఖేల్ దిఖాయా హమారే భట్టీ కే లియే. ఫిర్ ఔర్ బాతే బీచ్ మే ఆ గయి. డిస్టర్బ్ తో నహీ హువే, బోర్ తో నహీ హువే. క్యా హువా, హమ్ ఇత్నా ఖర్చా కర్కే ఆయే, కుచ్ భీ ఠీక్ నహీ హై. కిస్ కిస్ కో సంకల్ప చలా? చలా తో సహీ. ఎనీవే, హమారే జీవన్ మే కహీ ఐసే పరిస్థితియాం ఆతీ హై జహాం పర్ హమే డ్రామా యాద్ దిలానే కే లియే. బ్రాహ్మణ జీవన్ కీ జో యాత్రా హై వో ఏక్ పట్రీ పర్ హై. జసే ట్రేన్ పట్రీ పర్ హోతీ హై నా, పట్రీ సే జైసీ ట్రేన్ ఉతర్ జాతీ హై తో క్యా హోతీ హై. ऐसे ही हमारे भी जीवन में ये ड्रामा पर चलना ये पटरी है. जिस क्षण हम भूल जाते हैं ड्रामा है, तो मन में बड़ा आंदोलन चलता है, बड़ा इसको क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर चलता है, युद्ध चलता है. ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसे बहुत सारे चाहिए चाहिए चाहिए, ये संकल्प चलना, मन डिस्टर्ब होना, विचलित होना, ये सब इसलिए मन का हालत, मन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि हम ड्रामा को याद नहीं रखते हैं. और सबसे पहला पाठ बाबा ने बच्चों को यही सिखाया, बच्चे जो हुआ हाँ, जो हो रहा, जो होगा. लेकिन कल आपको बहुत सुंदर, आई प्रॉमिस, अनुभूति मिलेगी कल शाम को. एक और बात, जो हुआ, जो हो रहा, जो होगा, वो सिर्फ अच्छा नहीं है, सही है. एक है कोई बात अच्छा होना, एक है कोई बात सही होना. जरूरी नहीं है जो भी अच्छा है वो सही हो. इसलिए ड्रामा का मतलब ये है कि जो हो रहा, जो हुआ, जो होगा वो सही है, इसलिए अच्छा है. क्योंकि सही इज ऑलवेज अच्छा, राइट? अच्छा मे नॉट बी ऑलवेज सही. अभी डायबिटीज है किसी को, डायबिटीज में अगर मैं चॉकलेट खाऊं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर सही है? हां जी. तो अच्छा लगना हमेशा ही सही नहीं होती, पर जो सही है वह हमेशा ही अच्छा होगा. इसलिए ड्रामा को हमें बहुत ही एक गहराई से और सही रीति से समझना अति आवश्यक है. जो स्वदर्शन चक्र है ना, जिसको ड्रामा कहते हैं, वो एक है ऐसे घुमाना, एक है ऐसे घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना, सीधा घुमाना. और सही क्या है? सीधा की उल्टा, सीधा. कई बार सीधा घुमाने पर जरा सा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा कंफर्टेबल ना भी लगे, पर सही वही है. और वो लंबे समय के लिए सुख हमें मिलता है। लंबे समय के लिए हम अच्छे हो जाएंगे। थोड़े समय की अच्छाई देखकर लंबे समय की अच्छाई को खोना यह बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें लंबे समय की अच्छाई देखना, भले थोड़े समय के लिए थोड़ा कंफर्टेबल ना भी लगे, बट दैट्स फाइन। खैर, ये थी आज के दिन में जो भी हुआ उसके संबंधित। बाकी कुछ दिन पहले बाबा ने एक संदेश के द्वारा जो ड्रामा के बारे में डायरेक्ट शिव बाबा ऑलमाइटी ने जो बताई, मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा। मुरली के साथ साथ ड्रामा के 10 से 1 बातें आई थी, याद है? किस किस ने सुनी? बहुत हार्ट टचिंग। किस किस ने सुनी? हाँ, किस किस ने नहीं सुनी या पढ़ी, आप जरूर सुन ले। उस दिन शायद आप बिजी होंगे या कोई और कार्य हुआ होगा, जो नहीं सुना होगा पर अवश्य सुन ले। ड्रामा के बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने साकार मुरली के साथ, वो ऑलमाइटी बाबा जो संदेश के द्वारा ड्रामा की बातें बताई, वो बहुत ही सुंदर बातें। कितनी भी बातें बार वो पढ़े ना, आपको बड़ा आनंद आएगा। एनीवे, किस किस ने मकान बनवाया है, चाहे सेंटर हो या अपना खुद का मकान बनवाया है? वेरी गुड। वैसे मकान बनते तो हमने सब देखा, बनाया, नहीं भी बनाया तो कोई हर्ज नहीं, पर बनते तो देखे ही ना। मकान बनते किस किस ने देखा? सॉरी। जितने ज्यादा मंजिल हम मकान बनाएंगे, ये टेक्निकलिटी, ये टेक्निकली क्या करना चाहिए, अगर बहुत सारे मंजिले बनाने हैं, मान लीजिए 50, 60, 70, 100 मंजिला बनाना है, तो इसका इसका बेसिक जो नियम क्या है? वेरी गुड। जितने लंबे ऊंची हम इमारतें बनाते हैं या बहुत सारे मंजिले बनाते हैं, सबसे पहली बात, इसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो मजबूत होना अनिवार्य है। अगर नींव मजबूत है, आराम मंजिल पर मंजिल बनाया जा सकता है। मैं ये क्यों पूछा, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि इस संसार में उस ऊंचाई को जानते तक भी नहीं है, बहुत दूर। एक साधारण इंसान इतनी ऊंची स्थिति तक भी पहुंच सकता है, अंदाजा नहीं है। हम बच्चों को बताया, कल परसों भी बाबा ने कर्मातीत स्थिति की बात करी। कर्मातीत स्थिति पहुंचना है तो हमारे दृष्टि कैसे हो, कर्म कैसे हो, हाँ जी, सोच क्या हो, ऐसे कोई भी हमारे शास्त्रों में बातें बताई नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है जो बाबा ने बताया। बहुत ऊंची, इतनी ऊंची स्थिति जिसके बदौलत वो साधारण मनुष्य नारायण बन जाए, श्री लक्ष्मी बन जाए। उस स्थिति से, इतनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए नींव क्या है, जो अति आवश्यक है, उस अभ्यास के बगैर, उस नींव के बगैर हम एक मंजिला तो क्या, दीवार भी नहीं उठा पाएंगे, हाँ जी। और वो हैं वही फर्स्ट लेसन है, वही अंतिम शिक्षा है, वही प्रथम पाठ अंतिम पाठ वही है। मैं आत्मा हूं, यह समझ हम सबको है, समझ बुद्धि, हम सोचते भी हैं, मन तक है, बुद्धि मन तक है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूं, हम सोचते हैं, पर इसकी स्थिति नहीं बनी है। हम सबको, हम जितने भी यहां बैठे हैं, हम सबको पता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र हूं, शुद्ध हूं, ये मेरी असलियत है, यही मेरा रूप है। हम सब जानते हैं, बेदाग है, क्लियर है, और बेदाग है, पवित्र है, क्लियर है, इसलिए वहां शांति है, वहां शांति है इसलिए सुख है, हाँ जी, सुख है इसलिए जॉय है। ये सब आत्मा के अंदर है, आनंद है इसलिए प्रेम है। तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, बट द थिंग इज, ये फंडामेंटल प्रश्न ये है, क्या मैं आत्म अभिमान, एक है आत्मा समझना, बाबा हमें ये बताते हैं आत्म अभिमानी स्थिति बनाए रखना, आत्म अभिमानी इट्स अ कॉन्शियसनेस, चलते फिरते खाते पीते, जैसे ये शरीर का नाम मुझे नींद में भी याद, कोई बुला यही नाम कोई और पुकारता है, हम धक से उठते हैं ये समझ करके शायद मुझे ही किसी ने पुकारा हो, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उस नाम के साथ, हम दिल से इतने जुड़े हुए होते हैं कि हमको लगता है वही मैं हूं, और किसी के भी उस नाम पर अच्छी बात हो रही हो या गलत बात हो रही हो, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं खुद को भी लगेगा, ऐसा होता है ना, क्यूरियोसिटी होगा, अच्छा इस नाम वाले ने क्या किया था। तो ये आइडेंटिफिकेशन, आत्मस्थिति हम सभी के आत्मा की अनुभूति, चलते फिरते आत्मा बन के करना, यही हमारा अभ्यास है, यही फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन जितनी गहरी उतना इसके बाद की स्थिति उतना मजबूत, नहीं तो छोटी छोटी बातें दिल को खराब करने वाला, मन को विचलित करने वाला, मन को अपसेट करने वाला, मूड ऑफ होने वाला, ये सारी बातें होते हैं, इसलिए क्योंकि हम स्थिति में जानते हैं, ज्ञान है अभ्यास नहीं। हमारे जितने भी योग के शास्त्र है दुनिया में, इसमें दो बातें सब योग शास्त्रों में मेंशन है, लिखा हुआ है, बताया हुआ है, एक है डिटैचमेंट, दूसरा है प्रैक्टिस, अभ्यास, निरंतर हर रोज, जब तक ये दो बातें नहीं होंगे वो योगी नहीं बन सकते। ज्ञान तो दुनिया में भी तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, मगर ये दो बातें, क्योंकि दुनिया में क्या है कि ये डिटैचमेंट भी क्या है, न्यारा होना क्या है, देह से न्यारा होना क्या है, न्यारापन होता क्या है, इसका भी पूर्ण रूप से लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग यही समझते न्यारा होना मना घर बार छोड़ दो जंगल में चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, चले जाओ, ये कोई डिटैचमेंट नहीं है। वो तो बड़ा आसान है, छोड़ के आना बड़ा आसान है। जितने भी घर बार छोड़ करके सन्यासी लोग चले गए हैं वो इजी है, पर बाबा बहुत बहुत बड़ी चैलेंज ये है, चुनौती ये है, आपको वही घर में रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, वही कार्य करना है, मगर न्यारा रहना है। और ये न्यारा रहना अर्थात मन से भूलना है। बार बार याद करते हैं, बार बार मन किसी की तरफ चले जाते हैं, वो अटैचमेंट है। और मन से बिल्कुल उस बात को निकाल देना, वो डिटैचमेंट। बस हम कहाँ रह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हीं के साथ हम कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, बेशक आप गहने पहने हैं, आप नौकरी पर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जो भी है, जैसे भी जो भी कर रहा है, पर मन में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा मन होगा वैसी ही दृष्टि, वैसा बोल, वैसा कर्म। अगर वो बात मेरे मन चित्त में ही नहीं है तो दृष्टि भी वैसी नहीं होगी, बोल भी वैसा नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। दृष्टि बोल कर्म नहीं होगा तो इसका फल भी मिठाई ही होगा। इसलिए बहुत जरूरी है, सारा जो आध्यात्मिकता की जो फिलॉसफी है वो मन बुद्धि पर है। बस ओनली टू थिंग्स, क्या सोचते हो ये मन, क्या सोचना चाहिए ये बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करती है क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, ये बुद्धि, पर मन जो सोचता है। इसलिए बाबा ने कहा ये बुद्धि योग है। एक कहते हैं मन मना भव, और एक है ये बुद्धि योग है, राजयोग। क्या है? बुद्धि योग है। क्यों बुद्धि योग है? बिकॉज बुद्धि माना इट्स अ पावर ऑफ चॉइस। हर क्षण, हर कर्म, हर सोच के लिए क्या चूज करना, ये हमारे हाथ की बात है, ये शक्ति है। इट्स अ पावर ऑफ चॉइस। एक भी मिस्टेक हमने चूज करने में किया, एक भी निर्णय गलत हुआ, इसका परिणाम कभी 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 जिंदगी भर भोगतना पड़ता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। एक निर्णय काफी होता है। कभी कभी ऐसे भी निर्णय लोग लेते हैं जो न छोड़ा जा सकता है न रहा जा सकता है, और पूरी जिंदगी इसी पश्चाताप में बिता देते, काश मैं ये ना करता, काश ऐसा ना मैं बोलती। तो कितना भी काश काश करो, हो तो गया जो होना था। पूरा महाभारत एक शब्द के कारण, एक लाइन के कारण ही तो हुआ था। और द्रौपदी कितना भी बोले काश मैं ऐसा ना बोलती तो इतना बड़ा युद्ध ना होता। अब बोल दिया सो बोल दिया। डिसीशन, क्या चुना, क्या बोलने के लिए मैं बुद्धि चुनती है, और उस चुनाव के आधार पर मैंने क्या किया, उसका परिणाम से कोई नहीं बचा सकता, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हमने सही चूज किया हो, सही निर्णय लिया हो जिससे हमारे बहुत ऊंची प्राप्ति हुई हो, ऊंचा भाग्य बना हो, सारी दुनिया मिलकर के उस भाग्य को हमसे दूर करने की कोशिश करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी मन को विचलित करने से कोई फायदा नहीं है, कितनी भी चिंता कर ले कोई फायदा नहीं है। ये है आत्मज्ञान के साथ ड्रामा। एवरीथिंग इज लिंक्ड। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप को आत्मनिश्चय कर मुझ बाप को याद करो। ये है योग की विधि, निश्चय। वो बुद्धि करती है निश्चय, क्योंकि वो निर्णय बुद्धि करती है। तब मन मना भव हो सकता है, तब मन बाबा में बुद्धि मन लग सकता है। तो ये सारा योग का खेल जो है मन और बुद्धि का, अर्थात हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, यही खेल है सारा। और क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो किस पर आधारित है कि मैं अपने आप को क्या समझ रही हूं, उस पर आधारित है। कभी कभी गुस्से में ना लोग क्या कहते हैं, अपने आप को क्या समझते हो, क्या समझते हैं अपने, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो जिस जैसा भी व्यवहार उस व्यक्ति कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने को ऐसा समझ रहा है। अगर वो अपने को ऐसा ना समझता उसका व्यवहार ऐसा ना होता। तो इसलिए हम सोचते हैं, बोलते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति है, हमारे कृति कर्म ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं अपने आप को क्या सोच रही हूं, क्या समझ रही हूं। यह है फर्स्ट लेसन, यह है फाउंडेशन, यही आदि सो यही अंत। इसलिए बाबा कहते हैं जो अपने आप को सोचना है समझना है इसको पवित्र सत्य होना आवश्यक है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं सबको पवित्र बनाकर, पावन बनाकर मैं अपने साथ घर ले चलूंगा, बोलते हैं ना। और हम सबका जो स्लोगन भी है, अब अगर आप पांडव भवन के यहाँ जाएंगे ना, वो गेट के बाहर ही लिखा, गेट पर लिखा है। क्या लिखा है, किस किस ने नोट किया? हाँ, हमारा स्लोगन वही, योगी बनो पवित्र बनो। पहला क्या बनना है, योगी बनना कि पवित्र बनना है? योगी नहीं लगेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? अब बताइए, पहला योगी बनना है कि पवित्र बनना है? जी, योगी बनना है। पवित्र ही नहीं बनते तो योग कैसा लगेगा? अब बताइए, योगी बनना है कि पवित्र बनना है? हाँ, अभी दोनों एक साथ कैसे बनोगे? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अब दोनों ही पैर एकदम से उठाया थोड़ी जाएगा, पर एक पग उठाएंगे तो दूसरा पग टिका रहेगा। अब बताइए, योगी बनना है कि पहला कि पवित्र बनना है? जी, हो वेरी कॉन्फिडेंट। सबसे पहली बात, सत्य जानना है, सत्य के स्मृति में मन को टिकाना है। बस मेरे को एक बात बताइए, पवित्र माना क्या? व्हाट इज प्योरिटी? पवित्र क्या है? पवित्र बनना माना जी? ओके, पवित्र बनना माना पवित्रता, माना सत्यता. ट्रूथ इज प्योरिटी. मैं आत्मा हूं ये सत्य है, मैं शरीर हूं ये असत्य है. अब मैं आत्मा अशुद्ध कैसे बनी? क्योंकि मैं आत्मा को भूल मैं अपने आप को शरीर असत्य को अपनाया. अपने आप को असत्य के भान में रही, असत्य के स्मृति में रही, असत्य के स्मृति से कर्म किया, असत्य के स्मृति से बोला, असत्य के स्मृति से सोचा, असत्य के स्मृति से देखा और किया, जो कुछ भी किया पूरी जिंदगी असत्य के आधार पर जिया. इसलिए हम अशुद्ध हो गए. अशुद्ध माना असत्य, सत्य माने मैं आत्मा. आत्मा है ही पवित्र. अभी पवित्र बनना है तो सत्य के स्मृति में आना आवश्यक है. जब तक ये कॉन्स्टेंटली एक कंसिस्टेंट स्मृति, कंसिस्टेंसी नहीं है स्मृति की, कभी असत्य कभी सत्य, कभी सत्य कभी असत्य, इसी में हम डोलते रहें तो फिर हमारी स्थिति नहीं बनेगी. माना नीचे फाउंडेशन डालने में ही डोल रहे हैं, हाँ जी. तो इसके ऊपर डोलने वाले फाउंडेशन के ऊपर अगर एक दीवार भी करना हो टिक पाएंगे? मंजिल तो छोड़ो, ऊपर स्लैब लगाना तो छोड़ ही दीजिए, दीवार भी तो हिलते रहेंगे ना, और इस भय के साथ जिएंगे न जाने कब गिर जाए. इसीलिए द फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन है सत्य स्मृति. बाबा कहते दृष्टि में भी वो आत्मा सत्य स्मृति से देखें, आत्मा आत्मा भाई भाई के स्मृति देखें. कई मुरलियों में बाबा ने कहा बहुत ऊंची मंजिल है कि आत्मा के दृष्टि से देखना बहुत ऊंची मंजिल है. क्योंकि हम इतने आदि हैं, इतने अभ्यासी हैं कि हम बहुत जल्द इस असत्य के स्मृति में आ जाते हैं. असत्य के स्मृति से हमें डिटैच होना है. यही योग के फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल योग के क्या है? दो बातें, एक डिटैचमेंट, एक है अभ्यास. अब अभ्यास किस चीज का करे? डिटैच होने का करे. बार बार अभ्यास करे, हर रोज अभ्यास करे, सवेरे शाम दोपहर हर घड़ी हर प्रहर करे. क्या अभ्यास करे? डिटैच होने के. किस से डिटैच होने के? असत्य आइडेंटिटी से सत्य आइडेंटिटी के ओर. तब जाकर आत्मा धीरे 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 शुद्ध पवित्र पावन सत्य में हम बनेंगे, पवित्र यहां बनेंगे. अब हम सबको ऐसा लगता है हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं तो हम सभी आत्माभिमानी बन गए हैं. कौन कौन आत्माभिमानी बन गए हैं? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज. पूरा हम बन गए भाई, हम आत्मा अभिमानी बन गए. हाथ खड़ा करें. हम देह अभिमान में हैं? दोनों नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये फाउंडेशन में हम डोल रहे, कभी आत्मा अभिमानी कभी देह अभिमानी. देखो आत्मा अभिमानी बन गए इसमें कॉन्फिडेंटली हम हाथ उठा ही नहीं सकते, और हम पूरा देह अभिमान में भी नहीं हैं, है ना? ये भी तो गलत ही हुआ ना भाई. हमने जीवन दी है. आप में से कई भाई बहने होंगे बड़े स्ट्रगल, बड़े संघर्ष के साथ आप बाबा के बने होंगे, कितने आपने युद्ध किए होंगे अपने लौकिक परिवार से, कितने बंधनों से निकल करके आए होंगे, डांटे खाए होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, कुछ कुछ तो डिवोर्स तक के करके आए होंगे बाबा के पास। है यहाँ कोई डिवोर्स करके बाबा के पास आए हैं? सिर्फ बाबा के ज्ञान के लिए ना करने के लिए डिवोर्स भी कर दिया, ऐसा कौन है महात्मा? एनीवे है, कई बाबा के बच्चे हैं। फिर भी वो जो स्मृति है ना, वो हमें पुल करता है, खींचता है पीछे की तरफ। देखो घड़ी है ना, घड़ी, घड़ी एक है आगे की तरफ सुई जाती है, जब ही वो घड़ी खराब हो जाती है ना, वो कभी कभी पीछे की तरफ जाती है। सुई चल तो रही है पर वो पीछे की तरफ चल रही है, स्लो 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 जाती है। और कुछ कुछ सुई ऐसी, घड़ी ऐसी है, एक ही जगह में ठक 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 अटक जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, ऐसे भी है। तो हमारी भी बुद्धि की सुई ऐसी है, बहुत करके पीछे चली जाती है, बहुत करके एक ही बात में अटकी पड़ी है। क्यों हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसी, क्यों? अरे क्यों क्यों, आगे तो बढ़ो। नहीं, हम नहीं बढ़ेंगे। वही प्रश्न लेकर के हमारे सामने कोई आए, बढ़िया ज्ञान देंगे हम उनको, हम खुद भगवान बन जाएंगे, श्री कृष्ण बन जाएंगे और अर्जुन को ज्ञान दे रहे होंगे, जैसे लौकिक में कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात, ये करो ये करो ये करो। जब वही प्रश्न हमारे सामने आते, सुई की तरह अटक पड़ते हैं। एक बच्चा था, उसके घर में बोला, भाई तुम बकरे लेके आ, तो उसको दिया पैसा और बोला बकरी लेके आओ, उसके पिताजी बिजी होंगे या जो भी। वो गया बकरी लेके आ रहा था तो बकरी ठग ने उसे ठग करके वो बकरी लेके चला गया, तो बकरी गया, खो गया, मना चला गया। उसको बहुत बहुत डर लगा बच्चे को, अब क्या क्या करूं मैं, घर जाऊंगा मेरे को डांट पड़ेगा कि तुमने पैसा भी गवाया और बकरी भी नहीं आई, है ना। तो बैठ करके रो रहा था बच्चा, बहुत रो रहा था, मैं घर जाऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, मुझे बहुत वो डर के मारे पिटाई होगी, वो रो रहा था। तो एक जो है ना बाबा जा रहा था, एक साधु था, मानो एक फकीर था साधु, तो उसने कहा, बोल बच्चा क्यों रो रहा है, तुम इतना उदास क्यों है, क्यों रो रहा है? कहता, क्या करूं मेरा बकरी चला गया। उसने कहा, बस बकरी चली गई, इसके लिए इतना रोना? अरे तुम तो इंसान है, आपके एक एक आंसू मोती है मोती, और तुम एक साधारण बकरी के लिए रो रहा है? अरे इतने ऐसे इंस्पायर किया, ऐसे उसको प्रेरणा दिया उस बच्चे को, मैं सिर्फ एक बकरी के लिए रो रहा था। अरे कोई बात नहीं, हम जाएंगे फेस करेंगे, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं रो रहा था। वो घर चला गया हैप्पी हैप्पी, और जो भी बात हुए उनके घर में बोला और सब ठीक हो गया। उसको बड़ा हिम्मत आया, हम इतनी छोटी सी बात के लिए मन को इतना, हम इंसान है भाई, और इंसान का मन क्या शक्तिशाली है, और एक बकरी के लिए इंसान का मन रो रहा है। वो बहुत उसके मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया, सब ठीक ठीक हो गया। हो गया 10-15 दिन 20 दिन हो गया, फिर वो गया मार्केट में कुछ और खरीदने, और एक कोने में वो देखा एक व्यक्ति रो रहा था। उसने देखा, ये देखा सा लग रहा है, ये कौन है व्यक्ति, नजदीक जाके देखा, वही बाबा जो था ना फकीर, वो बैठ के रो रहा था। वो बच्चे ने कहा, भाई आप क्यों रो रहे हो महात्मा जी, साधु जी, फकीर जी, बाबा जी, जो भी बोला होगा। उसने कहा, मेरी बकरी खो गई। वो बच्चे ने कहा, क्या, जब मेरी बकरी खो गई थी आपने तो बहुत बहुत ऊंची ऊंची बातें बोली, हम इंसान है, आंसू मोती है, फलाना डिगना, अब आपकी बकरी खो गई तो आप क्यों रो रहे हो? तो फकीर जी, बाबा जी ने बोला, देखो बेटा वो तुम्हारी बकरी थी, ये मेरी बकरी है। सुना, बात जब आपकी बकरी की आती है मैं बड़ी बड़ी बातें बोल सकती हूँ। माइक है मेरे सामने जी, हैं जी, आपको भी लगता होगा अरे बहन जी आप मेरे घर में आओ दो घंटा बैठो आप सब भूल जाओगे, ड्रामा ज्ञान सब भूल जाएंगे, दो घंटा बैठो। हम जानते हैं क्योंकि हमारी बकरी आपकी बकरी एक ही है। The thing is practice. It's all about practice. अभ्यास, अभ्यास conscious practice. देखो इसमें दो अंतर बात है, एक है अभ्यास करना, बेशक हम सब अभ्यासी हैं, और एक है consciously वो लक्ष्य लेकर के अभ्यास करना, इसमें काफी फर्क है। एक है ritually practice करना, जैसे पहले मंदिर जाया करते थे, हैं जी, मंदिर जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, भजन करते थे, हमारा जो भी दिल के दुख दुख दर्द की बात है भगवान के सामने रो धो करके करते थे, बातें करते थे, कथा सुनते थे, सच वचन महाराज करके घर आ जाते थे। यह अभ्यास अभ्यास था जन्मों से। अब मंदिर जाने के बदले यहाँ आ रहे हैं, ओ साधु महात्मा कथा सुनने के जगह मुरली सुन रहे हैं, आरती व पूजा करने के जगह योग लगा रहे हैं। भारतवासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। एक है रिलीजियस प्रैक्टिस, एक है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दोनों में बड़ा अंतर है। और सुन लीजिए, एक है हमारे भगवान के साथ भक्ति में भी संबंध था, अब भी संबंध है। कई बार हम बाबा के बच्चे बनने के बावजूद भी हमारा जिस तरह के संबंध है कहीं ना कहीं वो भक्ति वाला ही संबंध हम अभी तक कायम रखे हुए हैं। आप में से कौन कौन है जो प्रश्न पूछ सकती हूँ, कौन कौन है बाबा के सामने अपने, देखो हमारा तो बाबा के अलावा कोई है नहीं, कौन कौन समझता है बाबा ही हमारा सब कुछ है, माता है, पिता है, बंधु वो है, हमारा बेस्ट फ्रेंड वो है, कौन समझता है बाबा हमारा सब कुछ है? क्यों भाई, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो क्या समझते बाबा को, बाबा आपका सब कुछ नहीं है? ये भाई लोग नहीं उठा रहे, आपका बाबा कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है, सब कुछ है ना। तो हमारा दुख दर्द किसके साथ बांटना है? बाबा के साथ। वेरी गुड। आप में से कौन कौन है जो बाबा के सामने अपना दुख दर्द सुना करके रोया है? वाह वाह क्या बात है। कौन कौन है जो बाबा के सामने अच्छी बात हुए तो बाबा को भी बताया है? वेरी गुड। कौन कौन है जब ये हमारे कोई कार्य नहीं हुआ होगा तो बाबा को थोड़ा सा डांट भी लगाया है? ओ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ उठाइए उठाइए, मुझे मालूम है, उठाइए। कौन कौन है बाबा को थोड़ा सा बाबा से नाराज हुआ है, बच्चे होने के बाद भी आप मेरा काम नहीं करते, आप नहीं करेंगे कौन करेंगे, ऐसे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा नाराज कौन हुआ है? हाँ उठाइए उठाइए, शर्माइए नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सारा कार्यक्रम भक्ति में भी तो करते थे, अब भी कर रहे हैं, क्या फर्क है? ये बहुत आवश्यक है। वो कौन है जिनके साथ हमारा संबंध है? वो कोई ठाकुर जी नहीं है, भगवान है, ईश्वर है, सर्वशक्तिवान है। अच्छा एक बात बताए, हमने बाबा को ढूंढा या बाबा हमें ढूंढा? पक्की बात, हमको तो अक्ल भी तो नहीं थी, उनको ढूंढना भी है, कहां जाके ढूंढे। तो जिस भगवान ने इस संसार के किसी कोने के स्ट्रीट के कोने के मकान से 10 लोगों में से जब मुझे चुन सकता है, जबकि उनको मेरी हालत के मन के स्थिति के कर्मों के सारा ज्ञान उनको है, उनको ये नहीं पता मेरे दुख सुख के, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये संगम युग है परमात्मा के साथ वो प्यार का संबंध रखने, प्यार लूटने रूठने की बात नहीं है। अगर मन में दुख है बाबा से योग नहीं लग सकता, पक्की बात अंडरलाइन करके लिख लीजिए। बाबा कहां रहते हैं, सॉरी कहां रहते हैं बाबा जी, हेलो कहां रहते हैं, विदेश में, क्या बोला भैया कहां रहते हैं, वेरी गुड, परम धाम में, ठीक है ना। हम सब का घर कहां है, शिव बाबा का घर कहां है, वेरी गुड, परम धाम कहां है, ऊपर। अब मुझ आत्मा के अंदर जो मन है बुद्धि है, ये मन बुद्धि इतना ऊंचा उड़ना है जो सूर्य चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार परम धाम जाना है। अगर मन में भार है उड़ सकेगा, तो ऐसे कैसे समझ लेंगे दुख बाबा के सामने बोल दिया। ये है भक्ति का रिश्ता। एंड द हैवीएस्ट थिंग, सबसे बड़ा भार है दुख। बहुत जरा सभी दुख मन में होगा आप योग नहीं लगा सकेंगे, पक्की बात। इसलिए मन को हल्का रखना अति आवश्यक है, और मन हल्का तब होगा जब मन में शुद्ध अर्थात सत्य विचार, सत्यता के संबंध विचार आएंगे, अर्थात आत्मा के संबंधित शुद्ध विचार को अनुभव करेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे। मैं आत्मा हूं सोचने वाली बात नहीं है। आप आत्माभिमानी स्थिति का मतलब ये नहीं कि मुझे सोचना है कि मैं आत्मा हूं, मुझे महसूस करना। किस किस को कोई डांटते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, कोई हमने कोई गलती नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, दुख होता है, लगता है मन को, किसी ने कह दिया मन को लगता है, तो ये लगा कैसे, ये फील हुआ ना, तो किसी व्यक्ति के गलत शब्द गलत कर्म में इतना महसूस करती हूं जो मेरे मन में दुख का सागर बन सकता है। तो जब भगवान कहते हैं वो शब्द भी हमारे मन में सुख का सागर बन सकता है ना, तो क्यों नहीं बनता। जैसे किसी व्यक्ति के शब्द का महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो बाबा की कही हुई बात को अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो मन में सुख का सागर कैसा बनेगा। हम बाबा की बातें सुनते हैं, फील नहीं करते। सो द एंटायर फिलॉसफी ऑफ मेडिटेशन इज टू फील। योग सोचना नहीं है, फील करना है। फील ही नहीं होगा तो भावनाएं कैसे उमड़ेगा। बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है योग में, हमें उसकी एक्सपीरियंस में, फीलिंग में चले जाना है। तो आत्मस्थिति है ये नहीं कैसा पता चलेगा, वो फिर आगे कभी टाइम मिलेंगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 7 बजने को है, अब हम 7 से 7:30 तक आधा घंटा, प्लीज हाथ में कुछ नहीं पकड़े, नोटबुक बुक पेन सब आपके बगल में संभाल के रखे, पर बगल में रखे, भूल भी नहीं जाना। बहन जी ने बोला आत्मा अभिमानी स्थिति, हम पर्स भूल के आ गए, वो आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके बैठे, मन की सारी बातें जो है एक लाल कपड़े में रखकर उसको गांठ बांधो, बांधा मन की सारी बातें जो भी बातें सब एक लाल कपड़े में रखकर उसको गांठ बांधो। बांधा बांधा। अब इस गेट के, हामनी हॉल के गेट के बाहर छोड़ दो। ठीक है, डीप ब्रेथ, लंबे श्वास, आराम से बैठो। अब मेरे लिए ये संसार नहीं है, देह भी नहीं है, अब ये आसमान में सितारे नहीं है, अब यहाँ हामनी हॉल में सिर्फ सितारे बैठे, चमकते हुए बहुत हल्के पवित्र शुद्ध सितारे। ठीक है, अब इस स्थिति में हम आधा घंटा बाबा के याद में बैठेंगे और उसके बाद फिर क्लास आपका रहेगा। ओम शांति।